بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب آخری مارکہ کا پارٹ نمبر 21 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں نسیم حجازی. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-213-8225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آخری مارکہ باب نمبر 20 جان پہچان. ٹھاکر نے کہا تو آپ فوراً گھر جا کر دوا لے آئیں. جے کرشن نے کہا مجھے ڈر ہے کہ مجھے آنے جانے اور پھر دوا تلاش کرنے میں بہت دیر لگ جائے گی. نرملا کہتی ہے کہ اس نے دوا کسی صندوق میں رکھی ہوئی ہے. اب مجھے معلوم نہیں وہ کون سا صندوق ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نرملا کو ساتھ لے جاؤں. اس وقت اس کی حالت کچھ ٹھیک ہے, لیکن ایک دو گھڑیاں گزرنے کے بعد اسے پھر دورہ پڑنے کا اندیشہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اسے فوراً گھر پہنچا دیا جائے. اگر دوا مل گئی تو کھاتے ہی اسے نیند آ جائے گی, ورنہ ویت کا گھر ہمارے نزدیک ہے, میں اسے وہاں بلا دوں گا. مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ پروہت جی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے, اس لیے مجھے اجازت دیں. آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں, نرملا کو تیار کریں, میں ابھی پالکی کا انتظام کر دیتا ہوں. روہت جی سے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد میں خود آپ کے ہاں آ کر اس کا پتہ کروں گا. جے کرشن نے کہا نہیں, آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, اگر ضرورت ہوئی تو میں آپ کو پیغام بھیج دوں گا, ورنہ آپ آرام کریں. اگر اسے آرام آ جائے تو ہی آپ مجھے پتہ دیں. اب میں نیچے جا کر پالکی تیار کراتا ہوں, آپ نرملا کو نیچے لے آئیں. تھوڑی دیر بعد نرملا پالکی میں سوار ہو کر اپنے گھر کا رخ کر رہی تھی اور جے کرشن اس کے ساتھ پیدل چل رہا تھا. 6. اپنے مکان کی جھوڑی کے قریب جے کرشن نے کہاروں کو روکا اور دروازہ کھلوانے کے لیے آگے بڑھا, لیکن نرملا نے کہا پتا جی ٹھہریے, پالکی کو اندر لے جانے کی ضرورت نہیں, میں یہیں اتروں گی. جے کرشن نے مڑتے ہوئے کہا اچھا بھائی یہیں اتار دو اور تم جاؤ. جب کہا نرملا کو اتار کر خالی پالکی اٹھانے لگے تو جے کرشن نے اپنی جیب سے چند سکے نکال کر ایک کہار کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا انہیں آپس میں بانٹ لینا. کہار تاریکی میں غائب ہو گئے اور نرملا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈیوڑی سے ذرا اور دور لے گئی اور کہنے لگی پتا جی ہمیں اپنے مکان میں داخل ہونے سے پہلے بہت کچھ سوچنا ہے. جے کرشن نے کہا اب صاف بات کرو, تم کیا چاہتی ہو؟ نرملا نے کہا پتا جی میں آپ کے لیے اپنا بلیدان دے چکی ہوں. میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ میں اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی, لیکن آج میں آپ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانے کے لیے مجبور ہوں, اپنے لیے نہیں کسی کے لیے. میری ذرا سی غلطی سے دو انسان موت کے منہ میں جا چکے ہیں. آپ انہیں بچا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو مجھے آپ ان کی چتا میں کودنے سے نہیں روک سکیں گے. جے کرشن نے کہا تم رامناتھ اور اس کی بیوی کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہاں, ساوتری وہی ہے جسے سومناتھ کے مندر میں روپپتی کے نام سے پکارا جاتا تھا. تمہارا مطلب ہے کہ روپپتی زندہ ہے؟ ہاں, اور اب جب کہ پروہت کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اس شہر میں ہے, وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا. اس وقت وہ ٹھاکر سے اس کے متعلق مشورہ کر رہا ہوگا. اب باتوں کا وقت نہیں, ہمیں اس لڑکی کو اس کے گھر سے نکالنا ہے اور ہمیں رامناتھ کو بھی یہ پیغام بھیجنا ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے. میں روپپتی کی سرگزشت سن چکی ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر پروہت میرے ساتھ وہی سلوک کرتا جو اس نے روپپتی کے ساتھ کیا ہے تو آپ سومناتھ کے مندر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہو جاتے. روپپتی دیوتا کے چرنوں میں نہیں پہنچی, بلکہ پروہت سے اپنی عزت بچا کر یہاں آئی ہے, اور اسے اس دیوتا نے بتایا ہے جس نے اپنے باپ کے قاتل کی گردن پر تلوار رکھنے کے بعد اسے معاف کر دیا تھا, جس نے مجھ سے اپنی بہن کا انتقام لینے کی بجائے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا تھا. پتا جی آپ کو زندگی میں نیکی کا ایک موقع ملا ہے, اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں. میں اسے یہاں لے آتی ہوں, آپ گھوڑے تیار کرائیں, ایک نوکر کو اس کے ہمراہ بھیج دیں اور دوسرے کو رامناتھ کی طرف روانہ کر دیجیے, میں روپپتی کو بلا لاتی ہوں. نہیں نہیں, جے کرشن نے نرملا کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تم نہیں جا سکتی, اس کے نوکر تمہیں پہچان لیں گے, اور اگر تم روپپتی کو نکال بھی لائیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پروہت کے انتقام سے نہیں بچا سکے گی. پتا جی بھگوان کے لیے مجھے نہ روکیے, اگر میں روپپتی کو نہ بچا سکی تو میں ساری دنیا کو یہ بتاؤں گی کہ اسے کس جرم کی سزا دی گئی ہے. میں ٹھاکر اور راجا کے سامنے پروہت کا جرم ثابت کر دوں گی. میں جانتی ہوں کہ وہ میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں. جے کرشن نے کہا تم روپپتی کو کہاں بھیجنا چاہتی ہو؟ اس کے لیے قنوج میں رنبیر کے گھر کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں, اسے صرف سرحد عبور کرنے کا خطرہ ہوگا. جے کرشن نے کہا मैं प्यारे लाल को उसके साथ भेज सकता हूं, लेकिन इस वक्त उसे घर से निकालना आसान नहीं। मैं उसके नौकरों को धोखा देने के लिए एक आम सिपाही का भेष बदलकर उसके घर जाने के लिए तैयार हूं। मैं नौकरों से कहूंगा कि मुझे रामनाथ ने एक जरूरी पैगाम देकर भेजा है, लेकिन उसे ये क्यों कर यकीन आएगा कि मैं उसकी जान बचाने के लिए आया हूं। निर्मला ने अपने हाथ से कंगन उतारकर जयकृष्ण को देते हुए कहा, यह कंगन दिखाने के बाद आप जो बात उसे कहेंगे वो मान जाएगी। ये उसी ने मुझे दिए थे। मैं मकान से बाहर खड़ी रहूंगी। जयकृष्ण ने कंगन लेते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ आओ, पहले हमारा घर जाना जरूरी है। भगवान करे अब हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए। वो तेजी से चलते हुए ड्यूड़ी की तरफ बढ़े। जयकृष्ण ने पहरेदार को आवाज दी। उसने दरवाजा खोल दिया। ड्यूड़ी के अंदर मशाल जल रही थी। जयकृष्ण ने अंदर दाखिल होते ही पहरेदार से पूछा, प्यारे लाल कहां है? जी महाराज, वो तो शायद सो गया है। अभी से सो गया है? जाओ उसे जगाकर यहां भेजो, और उसकी जगह आज तुम आराम करो। वो यहां पहरा देगा, और रघुबंद राम को भी यहां भेज दो। बहुत अच्छा महाराज, नौकर ये कहकर चला गया। जयकृष्ण निर्मला की तरफ मुतवज्जो हुआ, तुम जल्दी से अंदर जाकर अपने लिए कोई पुरानी ओढ़नी ले आओ। निर्मला भागती हुई मकान के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपने सर पर एक फटी पुरानी ओढ़नी लिए वापस आई तो जयकृष्ण प्यारे लाल के साथ अपने कपड़े तब्दील करने के बाद अपने सर पर उसकी मैली कुचैली पगड़ी लपेट रहा था। दूसरा नौकर गोबंद राम हैरतजदा होकर उनकी तरफ देख रहा था। चलिए पिताजी, बहुत देर हो गई है, निर्मला ने बेकरार सी होकर कहा। जयकृष्ण ने नौकरों की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम तीन घोड़े तैयार करो और एक लंबे सफर के लिए तैयार हो जाओ। बाकी नौकरों को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम कहां जा रहे हो। अगर अस्तबल की तरफ कोई नौकर हो तो उसे दूसरी तरफ भेज देना। जयकृष्ण निर्मला के हमरा बाहर निकल गया और नौकर इंतहाई बदहवासी की हालत में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्यारेलाल जयकृष्ण के पुराने नौकरों में वाहिद आदमी था जिसने मुसाइब के जमाने में उसका साथ छोड़ना गवारा नहीं किया था। उसके बाकी साथी एक एक करके रुखसत हो चुके थे। वतन की याद उसे भी सताया करती थी, लेकिन रणबीर का खौफ उसका रास्ता रोके हुए था। रणबीर के गांव से कुछ दूर उसके भाई और दूसरे रिश्तेदार रहते थे, और वो इस उम्मीद पर जयकृष्ण का साथ दे रहा था कि किसी दिन वो दोबारा अपने इलाके पर कब्जा कर लेगा और उसके लिए अपने गांव जाने का रास्ता खुल जाएगा। गोबंद राम ग्वालियर में निर्मला के मामू के यहां मुलाजिम था और निर्मला उसे अपने साथ ले आई थी। बाब नंबर 21, मददगार। रूपवती अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद न थी। खादिमा कमरे में दाखिल हुई और कहा, आप अभी तक नहीं सोई? रूपवती ने जवाब दिया, मुझे नींद नहीं आती। दिया बुझा दूं? नहीं नहीं, मैं खुद बुझा लूंगी। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, तुम जाकर सो जाओ। खादिमा साथ वाले कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रूपवती उसके खर्राटे सुन रही थी। वो देर तक बिस्तर पर पड़ी रही, फिर अचानक उसे बाहर सहन की तरफ किसी की आवाज सुनाई दी और वो उठकर बैठ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि चौकीदार किसी से बातें कर रहा है। वो जल्दी से उठी और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। थोड़ी देर बाद उसे बरामदे में किसी के पांव की आहट सुनाई दी। कौन है? उसने घबराई हुई आवाज में कहा। आप जाग रही हैं देवी? ये चौकीदार की आवाज थी। हाँ, क्या बात है? चौकीदार ने कहा, बाहर एक आदमी खड़ा है और कहता है कि मैं सरदार रामनाथ का पैगाम लेकर आया हूं। रूपवती जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल आई। आदमी उनका पैगाम लेकर आया है और तुमने उसे बाहर रोक दिया है? इस वक्त किसी को अंदर बुलाने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत थी। वो अकेला है? जी हाँ, वो ये भी कहता है कि सरदार का पैगाम सिर्फ आपके लिए है। अच्छा, उसे ले आओ और देखो होशियार रहना, आप फिक्र न करें। चौकीदार ये कहकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी था। रूपवती बरामदे के सुतून के पास खड़ी थी। जब वो करीब पहुंचे तो वो पीछे हटकर दरवाजे के सामने रोशनी में खड़ी हो गई। अजनबी ने किसी तमहीद के बगैर कहा, मुझे सरदार रामनाथ ने भेजा है, मैं आपके लिए एक जरूरी पैगाम लाया हूं। शहर से चंद कोस दूर मेरे घोड़े ने गिरकर दम तोड़ दिया था, वरना मैं शाम से पहले यहां पहुंच जाता। वो कब आएंगे? वो जल्द आ जाएंगे। और पैगाम क्या भेजा है उन्होंने? अजनबी ने मुड़कर चौकीदार की तरफ देखते हुए कहा, मुझे किसी के सामने बात करने की इजाजत नहीं। रूपवती के इशारे से चौकीदार ड्यूड़ी की तरफ चला गया और अजनबी ने इधर उधर देखते हुए अपनी जेब से दो कंगन निकाले और रूपवती की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, ये उन्होंने भेजे हैं। अजनबी ने कहा, आप अंदर दिए के करीब जाकर इन्हें गौर से देख लें, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि किसने भेजे हैं। रूपवती ने कंगन ले लिए और उन्हें देखती हुई कमरे में दिए के करीब पहुंची। एक सानिए के लिए उसका खून मुंजमिद होकर रह गया। अजनबी आगे बढ़कर दरवाजे में जाकर खड़ा हुआ और उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं जय कृष्ण हूं, निर्मला का बाप। निर्मला ने मुझे यह निशानी इसलिए दी थी कि शायद तुम उस पर एतबार ना करो। निर्मला इस हवेली के पीछे खड़ी है, वो इसलिए अंदर नहीं आई कि तुम्हारे नौकर उसे पहचान लेंगे। अगर तुम अपनी और रामनाथ की जान बचाना चाहती हो तो मेरे कहने पर अमल करो, वरना तुम्हारे साथ मेरी और निर्मला की भी खैर नहीं। पुरोहित को यह मालूम हो चुका है कि तुम रूपवती हो और शायद थोड़ी देर में उसके सिपाही इस हवेली का मुहासरा कर लें। अब सोचने का वक्त नहीं, मैं तुम्हें यहां से निकालने का इंतजाम कर चुका हूं। लेकिन रामनाथ, रूपवती ने डूबती हुई आवाज में कहा। जयकृष्ण ने उसके करीब जाकर कहा, अगर तुम यहां से निकल गई तो मुमकिन है कि मैं रामनाथ की भी जान बचा सकूं, वरना तुम्हारी गिरफ्तारी के मुतालिक सुनकर वो भागने की कोशिश नहीं करेगा। अब जल्दी यहां से निकलो, सिर्फ अपना जेवर ले लो, रास्ते में काम आएगा। और देखो, तुम्हारे पहरेदार को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम बाहर जा रही हो। मैंने एक तरकीब सोची है, तुम्हारे अस्तबल में घोड़ा तो होगा? हाँ, अस्तबल में तो एक की बजाय 3 घोड़े मौजूद हैं। तो तुम मेरे साथ चलो और पहरेदार से कहो कि मुझे वापस जाने के लिए घोड़े की जरूरत है। जब वो अस्तबल की तरफ जाएगा तो तुम्हें बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। वो यही समझेगा कि तुम कमरे में जा चुकी हो। हवेली के पीछे तुम्हें निर्मला मिलेगी, तुम उसके हमराह घर पहुंच जाओ, मैं घोड़ा लेकर वहां आ जाऊंगा। अगर पहरेदार किसी और नौकर को जगाने की कोशिश करे तो उसे मना कर देना। रूपवती ने कंगन जयकृष्ण को वापस दे दिए और एक संदूक से अपने जेवरात और सोने के सिक्कों की एक थैली निकालने के बाद जयकृष्ण के साथ बाहर निकल आई। चौकीदार जूड़ी से बाहर सहन में खड़ा था। रूपवती ने उसे कहा, देखो, इन्हें अभी वापस जाना है, इसलिए अस्तबल से एक घोड़े पर जैन डालकर इनके लिए ले आओ। किसी और को इनके आने जाने का नहीं होना चाहिए। इन्हें बेहतरीन घोड़ा देना, वरना सरदार खफा होंगे। और देखो, दूसरे नौकरों को जगाने की जरूरत नहीं। रूपवती अपने कमरे की तरफ चल पड़ी और पहरेदार ने अस्तबल का रुख किया। जब पहरेदार आंखों से ओझल हो गया तो रूपवती भागती हुई जूड़ी की तरफ बढ़ी। जयकृष्ण ने जल्दी से कुंडी खोली और भारी कवाड़ खींचकर रूपवती को बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने फिर उसी तरह कवाड़ बंद करके कुंडी लगा दी। 2 थोड़ी देर बाद हवेली के पीछे रूपवती निर्मला के साथ जयकृष्ण के मकान का रुख कर रही थी। निर्मला उसकी तसल्ली के लिए कह रही थी, वो नौकर जिसे मैं तुम्हारे साथ भेज रही हूं बहुत वफादार है। उसने सारी उम्र ग्वालियर में मेरे मामू के यहां गुजारी है। मैं उसे वहां से अपने साथ ले आई थी। पिताजी रामनाथ को खबरदार करने के लिए दूसरा नौकर भेज देंगे। भगवान तुम्हारी मदद कर रहा है। मुझे यकीन है कि रामनाथ तुम्हें आ मिलेगा। तुम रात भर सफर करना और दिन के वक्त किसी जंगल में आराम कर लेना। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं। अगर कहीं ठहरने की जरूरत पड़े तो शहरों की बजाय किसी छोटी बस्ती में कायम करना। सरहद में दाखिल होने के बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं रहेगा। रूपवती ने तशक्कुर के आंसू बहाते हुए कहा, निर्मला, तुम देवी हो, भगवान के लिए तुम रामनाथ को जरूर खबरदार कर देना। तुम फिक्र न करो। रूपवती ने कहा, निर्मला, मुझे रामनाथ तुम्हारे दिल का हाल बता चुका है। तुम रणबीर को कोई पैगाम भेजना चाहती हो? हाँ, उसे सिर्फ ये बता देना कि निर्मला जिससे तुम नफरत करते थे मर चुकी है। मकान के करीब पहुंचकर उन्हें पीछे से घोड़े की टाप सुनाई दी और वो मुड़कर देखने लगी। जयकृष्ण ने घोड़ा रोककर उतरते हुए कहा, रूपवती, तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ। निर्मला, तुम इसके पास ठहरो, मैं भी गोबंद राम को लेकर आता हूं। मुझे प्यारे लाल पर एतबार है, लेकिन उसे इन सब बातों का इल्म नहीं होना चाहिए। जयकृष्ण भागता हुआ ड्यूरी की तरफ बढ़ा। रूपवती घोड़े पर सवार हो गई। थोड़ी देर बाद गोबंद राम और जयकृष्ण आ गए। गोबंद राम एक घोड़े की बाग थामे हुए था। जयकृष्ण ने कहा, गोबंद राम, तुम्हारी मंजिल कनूज का वो गांव है जो कभी मेरा था। इस देवी की इज्जत के दुश्मन इसका पीछा करेंगे, इसलिए जरूरी है कि तुम जल्द सरहद उबूर कर जाओ। निर्मला ने कहा, पिताजी, मैं इस देवी को सब समझा चुकी हूं, इसलिए आप इन्हें इजाजत दें। फिर वो गोबंद राम की तरफ मुतवज्जो हुई। चचा गोबंद, इसकी इज्जत को मेरी इज्जत और इसकी जान को मेरी जान समझना। अचानक जयकृष्ण के दिल में कोई ख्याल आया और उसने आगे बढ़कर रूपवती से कहा, तुम अपने पति के लिए कोई ऐसी निशानी दे सकती हो जिसे देखकर वो मेरे एलची की बातों पर यकीन कर ले? हाँ, वो मेरी अंगूठी पहचान लेंगे। रूपवती ने यह कहकर अपनी अंगूठी उतारी और जयकृष्ण के हाथ में दे दी। 3 थोड़ी देर बाद रूपवती और गोबंद राम रात की तारीकी में रूपोश हो गए। जयकृष्ण निर्मला के साथ अपने मकान की जूढ़ी में दाखिल हुआ तो वहां प्यारे लाल 2 घोड़ों की बागें पकड़े परेशान खड़ा था। उसने डरते डरते पूछा, महाराज, गोबंद कहां गया है? मैंने उसे किसी को बुलाने के लिए भेजा है, जयकृष्ण ने उसे टालने की गरज से कहा। मैंने 2 घोड़ों की टाप सुनी है, उसके साथ कोई और भी था? हाँ, उसके साथ एक और आदमी गया है। अब ये बताओ कि तुम सरदार रामनाथ को जानते हो? वो जिन्हें सरहद पर जागीर मिली है? हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। वो अपनी जागीर देखने गए हैं और मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूं। तुम सीधे मशरक की तरफ जाओ। जब देवनगर पहुंचोगे तो वहां से 15 कोस आगे दरिया के किनारे जो बस्तियां हैं वो रामनाथ की जागीर हैं। प्यारे लाल ने कहा, जी मैं उसे तलाश कर लूंगा, उस इलाके में नया जागीरदार काफी मशहूर हो चुका होगा। ये लो, जयकृष्ण ने प्यारे लाल के हाथ में रूपवती की अंगूठी देते हुए कहा, ये उसे देना और मेरी तरफ से कहना कि जिस लड़की ने तुम्हें यह अंगूठी भेजी है वो कनूज रवाना हो चुकी है, इसलिए तुम शहर वापस जाने के बजाय कनूज में अपने दोस्त के पास पहुंच जाओ। निर्मला ने कहा, नहीं पिताजी, उसकी तसल्ली के लिए ये काफी नहीं होगा, मैं उसे खत लिख देती हूं। अपनी तरफ से? मैं अपना नाम नहीं लिखूंगी, लेकिन वो समझ जाएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन अगर तुम्हारा खत पकड़ा गया तो? अगर पकड़ा गया तो भी उस लड़की के दुश्मन ठाकुर के सामने मेरे मुंह से यह सुनना पसंद नहीं करेंगे कि मैंने ये खत क्यों लिखा है। जयकृष्ण ने बेबसा होकर कहा, निर्मला जो जी में आए करो, आज मेरी अक्ल काम नहीं करती। तुमने मुझे एक ऐसी दलदल में धकेल दिया है जिससे बाहर निकलना मेरे बस की बात नहीं। नहीं पिताजी, आज मैं आपको आकाश की बुलंदियों पर देख रही हूं। आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी आती हूं, और देखिए अब अपना लिबास पहन लीजिए। निर्मला मकान के अंदर चली गई। जयकृष्ण ने प्यारे लाल के साथ दोबारा अपना लिबास तब्दील किया और ड्यूटी से बाहर निकलकर सहन में टहलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने प्यारे लाल के करीब आकर कहा, तुम दरवाजे की कुंडी लगा दो और अगर कोई बाहर से दस्तक दे तो दरवाजा खोलने से पहले घोड़े अस्तबल की तरफ हाँक देना, मैं भी आता हूं। 4. निर्मला एक कमरे में बैठी खत लिख रही थी। खादिमा ने दरवाजे से झांकते हुए कहा, मैं आपके तीनों संदूक देख चुकी हूं, मुझे कोई दवा नहीं मिली। निर्मला ने कहा, शायद मैंने पिताजी के संदूक में रख दी हो, तुम सो जाओ, मैं उसका खुद तलाश करती हूं। खादिमा चली गई और इससे थोड़ी देर बाद जयकृष्ण कमरे में दाखिल हुआ। निर्मला ने कहा, पिताजी मैं खत लिख चुकी हूं, देखिए। जयकृष्ण ने आगे बढ़कर खत उठा लिया और चराग की रोशनी में खड़े होकर पढ़ने लगा। निर्मला के खत का मजमून ये था, भैया रामनाथ, जब तुम एलची से पूछोगे कि मैं कौन हूं और किसकी बेटी हूं तो तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी कि मैं जो कुछ लिख रही हूं झूठ नहीं। रूपवती का भेद खुल गया है, इसमें कुछ मेरी गलती थी। वो दुश्मन जिसके कब्जे से तुमने उसे निकाला था इस शहर में उसे तलाश कर रहा है। रूपवती कहती थी कि रणबीर ने उसे बहन कहा था। मैं उसे रणबीर की तरफ रवाना कर रही हूं, इसलिए तुम भी वहां पहुंच जाओ। वापस आए तो तुम्हारी जान खतरे में है। एलची हमारा पुराना नौकर है और मैं इसके हाथ खत के अलावा रूपवती की एक निशानी भी भेज रही हूं, तुम्हारी एक बहन। जयकृष्ण ने झुंझलाकर निर्मला की तरफ देखा और कहा, अगर तुम खत के नीचे अपना नाम भी लिख देती तो इससे क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं, निर्मला ने इतमिनान से जवाब दिया। पिताजी अगर मैं अपना नाम भी लिख दूं और यह खत पकड़ा भी जाए तो भी ठाकुर के सामने मेरी शिकायत करने से पहले पुरोहित को यह मानना पड़ेगा कि सावित्री रूपवती है और उसने उसके बारे में जो कुछ मशहूर किया है वो लोगों को धोखा देने के लिए था, और यह बात ऐसी है जो पुरोहित कभी गवारा नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि प्यारा लाल इस खत को हिफाजत से पहुंचा देगा, आप सिर्फ उससे इनाम का वादा कर दें। जयकृष्ण ने लाजवाब सा होकर कहा, चलो जल्दी करो। वो दोनों ड्यूटी में आए। जयकृष्ण ने प्यारे लाल को खत देते हुए कहा, देखो प्यारे लाल, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारी दोनों मुठ्ठियां सोने से भर दूंगा। यह खत रामनाथ के सिवा किसी को ना दिखाना। निर्मला ने कहा, और मैं ठाकुर से कुछ जमीन भी दिला दूंगी ताकि तुम इत्मीनान से अपनी जिंदगी बसर कर सको। रामनाथ अगर तुमसे मेरा और पिताजी का नाम पूछे तो बता देना। जयकृष्ण ने कहा, लेकिन यह खत रामनाथ के सिवा किसी और के हाथ में आ गया तो मैं तुम्हारी खाल उतरवा दूंगा। अब शहर से जल्दी बाहर निकल जाओ। प्यारे लाल ने दरवाजा खोला और घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहा, महाराज दूसरे घोड़े पर कौन जाएगा? जयकृष्ण ने इंतहाई जब्त से काम लेते हुए कहा, दूसरा घोड़ा यहीं रहेगा, भगवान के लिए अब जाओ। प्यारे लाल बाहर निकलकर घोड़े पर सवार हो गया। जयकृष्ण ने मिशाल उठाते हुए कहा, निर्मला अब तुम अंदर जाओ, मुझसे बड़ी गलती हुई। मुझे आते ही किसी को ठाकुर के पास ये पैगाम देकर भेज देना चाहिए था कि तुम्हारी दवा मिल गई है और तुम आराम से सो रही हो। अब मैं ये घोड़ा स्तबल में छोड़कर किसी को वहां भेजता हूं, लेकिन सोना जाना, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। आप मुझसे सुबह तक बात कर सकते हैं। अंदर जाकर थोड़ी देर बाद निर्मला एक कमरे में बैठी जयकृष्ण का इंतजार कर रही थी। गुज़श्ता ज़हनी और जिस्मानी कोफ्त के बाद अब उसे सुकून और इत्मीनान महसूस हो रहा था। जयकृष्ण कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर तशवीश और इस्तराब के आसार देखकर निर्मला ने कहा, पिताजी भगवान को खुश करने के बाद आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जयकृष्ण ने निढाल सा होकर उसे करीब कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं अभी तक ये महसूस कर रहा हूं कि यह सब कुछ मैंने ख्वाब की हालत में किया है। मालूम नहीं पुरोहित जी इस वक्त क्या कर रहे होंगे। वो अब कुछ नहीं कर सकते, सुबह तक रूपवती कोसों दूर जा चुकी होगी, और भगवान करे कि प्यारे लाल रामनाथ को बर वक्त बाखबर कर दे। جےکرشن نے کہا، میں اب ان کے متعلق نہیں تمہارے متعلق سوچ رہا ہوں۔ پروہت کو جب معلوم ہوگا کہ روپتی غائب ہو چکی ہے تو وہ یقیناً تم پر شک کرے گا اور اس کا انتقام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں اس سے نہیں ڈرتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ روپتی کو سرحد عبور کرنے کے لیے وقت مل جائے۔ پتا جی، کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس سارے کام میں بھگوان نے آپ کی مدد کی ہے؟ جے کرشن نے تل ملا کر جواب دیا، اگر بھگوان میرے حال پر اسی طرح مہربان رہا تو مجھے یقین ہے کہ دنیا میں میرے لیے سانس لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ نرملا کوشش کے باوجود اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ 5، باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور جے کرشن نے گھبرا کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، کون ہے؟ ایک نوکر نے جواب دیا، مہاراج ٹھاکر جی تشریف لائے ہیں۔ جے کرشن نے نرملا کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ فوراً کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کہاں ہیں ٹھاکر جی؟ جے کرشن نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نوکروں کی بجائے ٹھاکر نے کمرے میں پاؤں رکھتے ہوئے جواب دیا، دیکھیے مجھے خدا نہ پڑا، نرملا کیسی ہے؟ اب سو گئی ہے، ہمیں دوا تلاش کرنے میں بہت دیر لگی، میں نے ابھی آپ کی طرف نوکر بھیجا ہے، وہ شاید آپ کو نہیں ملا۔ نہیں، میں بہت پریشان تھا، میں فوراً یہاں آنا چاہتا تھا لیکن پروہت جی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ تشریف رکھیے۔ نہیں، نرملا کی نیند خراب ہوگی، میں اب واپس جاتا ہوں، آپ بھی آرام کریں، تھوڑی دیر بیٹھیے، نرملا پر صبح تک دوائی کا اثر رہے گا، اب اگر اس کے پاس کوئی ڈھول بھی پیٹے تو اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، یہ دوا بہت اچھی ہے۔ بھگوان کا شکر ہے کہ آپ کو دوا مل گئی، ٹھاکر نے اطمینان سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جے کرشن نے کہا، پروہت جی مجھے کچھ پریشان نظر آتے تھے، آپ سے کوئی خاص بات تو نہیں کہی انہوں نے؟ ٹھاکر نے جواب دیا، پروہت جی سومناتھ کی حفاظت کے بارے میں مہاراجہ سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ محمود سومناتھ پر ضرور حملہ کرے گا اور دیوتاؤں کی مرضی بھی یہی ہے کہ اس کے سپاہیوں کی لاشیں سومناتھ کی دیواروں کے سامنے روند دی جائیں۔ پروہت جی کی خواہش ہے کہ اگلے مہینے تمام راجے سومناتھ میں جمع ہو کر یہ حلف اٹھائیں کہ خطرے کے وقت اپنے لشکر کے ساتھ سومناتھ کی حفاظت کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ہمارے مہاراج نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ انہل واڑہ کی فوج کو سومناتھ میں جمع ہونے کے بجائے کاٹھیا واڑ کی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن پروہت جی کو یہ اطمینان نہیں کہ انہل واڑہ کی فوج حملہ آوروں کو کاٹھیا واڑ کی سرحدوں پر روک سکے گی، اس لیے اب وہ خود مہاراج سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی ان کے ساتھ جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جے کرشن نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھاکر نے جواب دیا، میری رائے بھی یہی ہے کہ جنوب کے تمام راجے سومناتھ کی حفاظت کے لیے جمع ہو جائیں اور ہم اپنی سرحدوں پر ڈٹ جائیں، مجھے یقین ہے کہ ہم دشمن کو سرحد پر روک سکیں گے، لیکن اگر ہم اسے نہ بھی روک سکے تو پیچھے ہٹتے ہوئے قدم قدم پر اس کا مقابلہ کریں گے، اس طرح سومناتھ تک پہنچتے پہنچتے دشمن کی بیشتر قوت زائل ہو چکی ہوگی اور ہمارا وہ لشکر جو سومناتھ کی حفاظت کے لیے جمع ہوگا آسانی سے اسے تباہ کر سکے گا، یہاں تک کہ دشمن کا ایک آدمی بھی ہمارے دیوتاؤں کے عذاب سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ مجھ سے باتیں کرنے کے بعد پروہت جی نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ انہل واڑہ جانے سے پہلے شیو جی کے مندر کے پجاریوں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ محل میں آرام کرنے کی بجائے مندر میں تشریف لے گئے ہیں۔ اس وقت؟ ہاں، میں بھی انہیں وہاں پہنچا کر آیا ہوں۔ پروہت جی رتھ پر سوار ہونے کی بجائے مندر تک پیدل گئے ہوں گے، وہ تو دیوتا ہیں، نیند اور تھکاوٹ کا ان پر کیا اثر ہو سکتا ہے، لیکن بعض پجاریوں کا برا حال تھا، بیچارے چلتے ہوئے اونگ رہے تھے۔ جے کرشن نے پوچھا، وہ سب پروہت جی کے ساتھ گئے ہیں؟ نہیں، صرف 7 یا 8 پجاری اور ان کے اپنے چند سپاہی۔ آپ نے ان کی سیوا کے لیے اپنے سپاہی کیوں نہیں بھیج دیے؟ میں تو یہی چاہتا تھا، لیکن پروہت جی کہتے تھے کہ ان کے مندر میں جانے کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، مندر کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے مجھے بھی رخصت کر دیا تھا، وہ کہتے تھے کہ تم نرملا کی خبر لو، ہم باقی رات یہیں گزاریں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ نرملا میرے ساتھ آ گئی ہے؟ نہیں، میں نے سوچا کہ وہ پریشان ہوں گے اس لیے نہیں بتایا۔ جے کرشن نے کہا، تو آپ یہیں آرام کریں، میں آپ کو صبح ہوتے ہی جگا دوں گا۔ نہیں، اب تو صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں، مجھے گھر جا کر پروہت جی کا انتظار کرنا چاہیے، بھگوان کرے وہ صبح سفر کا ارادہ تبدیل کر دیں ورنہ میرا برا حال ہوگا۔ جے کرشن نے کہا، ٹھہریے، میں آپ کے لیے رتھ تیار کراتا ہوں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ ٹھاکر نے کہا، رتھ کی ضرورت نہیں، میں آپ کا گھوڑا لے جاتا ہوں۔ اس گفتگو کے دوران نرملا جو بستر پر آنکھیں بند کیے یہ باتیں سن رہی تھی اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ جے کرشن اور ٹھاکر کے اٹھتے ہی اس نے انگڑائی لی اور پانی پانی کہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ میں ابھی لاتا ہوں بیٹی، جے کرشن یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ٹھاکر نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب تمہارا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہاں کب تشریف لائے ہیں؟ میں ابھی آیا ہوں، ٹھاکر یہ کہہ کر نرملا کے بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، مجھے دوا کھاتے ہی نیند آ گئی تھی۔ پتا جی نے آپ کو پیغام نہیں بھیجا؟ نہیں، مجھے ان کا پیغام نہیں مل سکا، और अगर मिल भी जाता तो भी तुम्हें देखे बगैर मेरी तसल्ली न होती। मैं सुबह सवेरे प्रोहित जी के साथ अनहलवाड़ा जाने का इरादा कर चुका हूँ। वहां शायद मुझे चंद दिन ठहरना पड़े, इसलिए जाने से पहले तुम्हारे मुतालिक इत्मीनान करना जरूरी था। इस तकलीफ का बाकायदा इलाज होना चाहिए। मैं वापसी पर मनुराज को लेता आऊंगा। निर्मला ने कहा, नहीं, आप उन्हें तकलीफ न दें। मुझे इस दवा से फौरन आराम आ जाता है। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से प्रोहित और दूसरे मेहमानों को परेशानी हुई। ठाकुर ने जवाब दिया, नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। प्रोहित जी को यह भी मालूम नहीं कि तुम यहां आ गई हो। निर्मला ने कहा, आपको रुख्सत करने के लिए मेरा घर में होना जरूरी है। ठाकुर ने कहा, हाँ, तुम प्रोहित जी के दर्शन कर लेती तो अच्छा होता। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो मैं सुबह रवाना होने से पहले तुम्हारे लिए पालकी भिजवा दूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ पैदल चलने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी। औरत को अपने पति के साथ चलने में तकलीफ नहीं होती। ठाकुर ने अपने दिल में खुशगवार धड़कने महसूस की। शादी के बाद निर्मला के तरह जमल ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो शायद अपनी तमाम दौलत उसके कदमों पर निछावर करने के बाद भी उसकी मोहब्बत न खरीद सके। उसने तशक्कुर के जज्बा से मकलूब होकर कहा, तो चलो, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। थोड़ी देर बाद जयकृष्ण पानी का कटोरा उठाए कमरे में दाखिल हुआ। निर्मला ने कटोरा उसके हाथ से ले लिया। ठाकुर ने जयकृष्ण की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, आप इजाजत दें तो मैं निर्मला को अपने साथ ले जाऊं। अगर निर्मला की तबीयत ठीक है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस वक्त। निर्मला ने पानी के चंद घूंट हलक से उतारते हुए कहा, पिताजी, ठाकुर जी सुबह प्रोहित जी के साथ जा रहे हैं और इन्हें रुख्सत करने के लिए मेरा घर पहुंचना जरूरी है। ताजा हवा में पैदल चलने से मेरी तबीयत और ज्यादा ठीक हो जाएगी, लेकिन यह अजीब सी बात होगी। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद ठाकुर और निर्मला अपने महल का रुख कर रहे थे। ठाकुर थकावट से निढाल होने के बावजूद बेहद मसरूर था। जयकृष्ण के मकान की झूड़ी से निकलते ही उसने निर्मला का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, निर्मला, अब मुझे हर कदम पर तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी। निर्मला ने आहिस्ता से जवाब दिया, आपकी सेवा मेरा फर्ज है। ठाकुर ने उसका हाथ खींचकर अपने होंठों से लगाते हुए कहा, तुम देवी हो निर्मला, और तुम्हारा ये पुजारी इसके सिवा कुछ नहीं चाहता कि तुम इससे नफरत ना करो। निर्मला ये महसूस कर रही थी कि उसके हाथ पर किसी ने दहकता हुआ अंगारा रख दिया है। वो चंद सानिये बेहस हरकत खड़ी रही, फिर अपना हाथ खींचते हुए बोली, चलिए। ठाकुर ने मखमूम लहजे में कहा, मैं जानता हूं निर्मला, तुम्हें मेरे सफेद बालों के साथ प्रेम नहीं हो सकता। मैं तुमसे सिर्फ रहम की भीख मांगता हूं। निर्मला ने करबंगेज लहजे में कहा, ऐसी बातें ना कीजिए, मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलिए, आप बहुत थके हुए हैं। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। एक पुजारी को अपनी देवी से शिकायत करने की जरूरत नहीं हो सकती। ठाकुर ये कहकर उसके साथ चल दिया। 6. घर पहुंचकर उन्हें पता चला कि प्रोहित जी अभी तक नहीं आए। निर्मला ने इत्मीनान का सांस लिया। जब वो बालाई मंजिल के कमरे में दाखिल हुए तो ठाकुर ने कहा, निर्मला, अब सुबह होने को है, प्रोहित जी आते ही होंगे, तुम लेट जाओ। जब वो आ जाएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। निर्मला ने कहा, मुझसे ज्यादा आपको आराम की जरूरत है। मुमकिन है कि प्रोहित जी जरा देर से आए और आपको थोड़ी देर आराम के लिए वक्त मिल जाए। आपको सफर करना है और मैं तो सारा दिन सो सकती हूं। ठाकुर थकावट से चूर हो चुका था। उसने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, बहुत अच्छा, मैं जरा कमर सीधी कर लूं। निर्मला एक कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसे ठाकुर के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। निर्मला ने चराग की धुंधली रोशनी में उसका चेहरा देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके तसव्वुरात माजी की तरफ दौड़ रहे थे, माजी जो रणबीर के सपनों से भरपूर था, माजी जहां उसकी जवानी के तमाम बलबले दम तोड़ चुके थे, माजी जिसकी तरफ लौटना उसके बस की बात न थी और जिसने उसे आहों और आंसुओं की पूंजी देकर मुस्तकबिल की भयानक वसातों की तरफ धकेल दिया था। निर्मला का दम घुटने लगा। वो उठकर बालकनी की तरफ बढ़ी और अपनी आंखों में छलकते हुए आंसू पोंछने के बाद आसमान की तरफ देखने लगी। मशरक के उफुक से सुबह का सितारा नमूदार हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सितारों की चमक मान पड़ने लगी और रात की तारीखी सुबह के धुंधलके में तब्दील होने लगी। थोड़ी देर बाद उसे महल की चारदीवारी से बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी और इसके साथ ही उसे चंद सवार दिखाई दिए जो अस्तबल से निकलकर दूसरी तरफ जा रहे थे। सवार जल्द ही उसकी निगाहों से ओझल हो गए। निर्मला वापस मुड़ने का इरादा कर रही थी कि उसे प्रोहित जी महल की तरफ आते हुए दिखाई दिए। निर्मला जल्दी से कमरे में दाखिल हुई और उसने ठाकुर को बाजू से पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, प्रोहित जी आ गए हैं। ठाकुर हड़बड़ाकर उठा और उसने आंखें मलते हुए कहा, कहां हैं प्रोहित जी? वो नीचे अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं, भगवान करे वो सफर का इरादा मुलतवी कर दें। ठाकुर ये कहकर लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये पाठ खत्म हुआ, बकिया हिस्सा अगले पाठ में सुनिए।